नमस्कार श्रोताओं, की दौर मोबाइल वाणी के लिए मैं संजीवन कुमार सिंह। मोबाइल वाणी पर चल रहे कार्यक्रम पक्ष विपक्ष कड़ी संख्या 30, चुनाव से निकले जनता के सबक। दोस्तों बता दें कि लोकतंत्र का उत्सव चुनावों ने राजनेताओं और जनता को बहुत से सबक दिए हैं, और ऐसे सबक जो केवल चुनावी राजनीति में नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में हमें सीखना जरूरी होती है। और ये सबक आज के आजाद भारत के समाज को कुछ क्या कुछ बताती हैं। दोस्तों बता दें कि पहले एक अपनी गरीबी और अज्ञान को दूर करना चाहिए, शक्ति संपन्न बनना चाहिए। एक कहावत थी, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। बता दें कि भारत को विश्व गुरु बनने में महिलाएं भी अपना योगदान अपने घर परिवार से और हर क्षेत्र से दे सकती हैं। पूर्ण शिक्षित होंगी तो अपने बच्चों को भी शिक्षित कर सकेंगी, साथ ही नैतिक मूल्यों की रक्षा भी कर सकेंगी। सदाचार में जिस स्थिति में विश्व गुरु होने के समय था, उस स्थिति में आने के लिए बेहद प्रयास की जरूरत है, जो आसान तो नहीं पर नामुमकिन भी नहीं। हमारे देश के नैतिक मूल्य हमारे सर्वांगीण विकास में सहायक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग आमतौर पर चुनावों के सांख्यिकी अध्ययन और मतदान के रुझानों का अध्ययन करने के लिए राजनीति विज्ञान के एक प्रभाग सेफोलॉजी की मदद लेते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े कार्यात्मक लोकतंत्र भारत में चुनाव विज्ञान का ज्योतिषीय शास्त्र से बदल दिया गया है। बता दें पिछले 2-3 साल पहले 12 दिसंबर 2018 को जब तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव को दोपहर 1:24 से 3:04 के बीच राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेनी थी, वह समय किसने तय किया? यह कोई अधिकारी नहीं बल्कि के चंद्रशेखर राव के प्रमुख ज्योतिषी लक्ष्मी धर्माचार्य हैं। उन्होंने भारतीय ज्योतिषी में अपने दृढ़ विश्वास के लिए जाने जाते हैं। अपने लिए 6 नवंबर को भाग्यशाली मानते हैं, ऐसा उनके पुजारी ने बताया था, जिन्होंने इसे ज्योतिषीय चार्ट से प्राप्त किया था। उन्होंने 12 दिसंबर 2018 का योग भी 6 है। धर्माचार्य के अनुसार जिस समय उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह निर्धारित किया था, उस समय शुभ अभिजीत मुहूर्त लागू था। इसके अलावा पिछले चुनाव तेलंगाना में जब चुनाव हुई थी, तो उस समय जो तारीख की घोषणा के तुरंत बाद पार्टी लाइनों से परे राजनेताओं को कथित तौर पर अपनी तस्वीरें क्लिक करवाने के लिए हैदराबाद के अरुण स्टूडियो में आते देखा गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह दृढ़ता से माना जाता है कि स्टूडियो में खींची गई एक तस्वीर निश्चित रूप से चुनावी जीत सुनिश्चित करती है। वहीं स्थानीय समाचार पत्र के अनुसार रिपोर्ट में एक ऐसा दावा था कि केटी रामा राव, टी हरीश राव और कादियाम श्रीहरि जैसे कई नेता स्टूडियो के मालिक सतीश को अपने आवास पर बुलाते हैं, क्योंकि वे सुरक्षा चिंताओं के कारण स्टूडियो नहीं जा सकते। लेकिन यह सिर्फ केसीआर और तेलंगाना नहीं है, मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बुरी नजर से बचने के लिए नींबू और मिर्च से बनी माला पहने देखा गया था। यहाँ तक कि राजस्थान भाजपा के कद्दावर नेता घनश्याम तिवारी ने भी अपना पर्चा दाखिल करने से पहले शुभ क्षण के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में 13 मिनट तक इंतजार किए थे। कथित तौर पर उन्होंने आगे बढ़ने से पहले एक मंत्र का भी जाप किया, लेकिन चुनाव हार गए। ज्योतिषी के साथ भारतीय राजनीति की मुलाकात इसकी स्वतंत्रता के समय से चली आ रही है, जिसे उन्होंने बाद में एपिफेनी के रूप में संदर्भित किया। भारत के अंतिम वायसराय लुईस माउंटबेटन ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में चुना, क्योंकि यह उन्हें गहराई से प्रभावित करता है, क्योंकि यह वह दिन था जब जापानियों ने बर्मा में आत्मसमर्पण कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में माउंटबेटन दक्षिण पूर्व एशिया के सर्वोच्च सहयोगी कमांडर थे, लेकिन यह निर्णय भारत के ज्योतिषियों को पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्हें 15 अगस्त एक अत्यंत अशुभ दिन लगा। फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक के लेखक लॉ पीरे और कोलिंस के अनुसार विशेष रूप से एक ज्योतिषी स्वामी मदमानंद ने माउंटबेटन को पत्र लिखकर कहा, ईश्वर के प्रेम के लिए 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता न दें। यदि बाढ़, अकाल और इसके बाद नरसंहार होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि स्वतंत्र भारत का जन्म सितारों द्वारा स्थापित दिन पर हुआ था। एक समझौते के रूप में भारत को 14 और 15 अगस्त के बीच आधी रात को स्वतंत्रता दी गई, क्योंकि पश्चिम के लिए एक नया दिन आधी रात को शुरू होता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह सूर्योदय के समय शुरू होता है। 21वीं सदी में जब भारत चंद्रमा पर चंद्रयान भेजने की कोशिश कर रहा था, ज्योतिष अभी भी देश की कई प्रमुख घटनाओं के लिए समय निर्धारित करता है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के निजी ज्योतिषी श्री निवास गार्गे ने चेतावनी दी कि 6 जून राज्य की नई राजधानी अमरावती के लिए भूमि पूजा के लिए अशुभ है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने सलाह को दरकिनार कर दिया और उसी दिन समारोह को आयोजित किया। हालांकि विजयवाड़ा में उनके कैंप कार्यालय का उद्घाटन स्थगित कर दिया गया, क्योंकि वह ज्योतिषियों द्वारा निर्धारित सुबह 10:30 के सुबह समय से चूक गए। राजस्थान में भी ज्योतिष का प्रभाव देखा गया। राजस्थान विधानसभा में विधायकों ने यह दावा करते हुए विधानसभा भवन को शुद्ध करने की मांग की कि वहां आत्माओं का साया है। उन्होंने यह कहते हुए अपनी मांग का समर्थन किया कि सदन, जो एक श्मशान भूमि पर बना है, कभी भी 200 सदस्यों की अपनी अधिकतम संख्या को बहुत लंबे समय तक बरकरार नहीं रखता है, क्योंकि या तो कोई इस्तीफा दे देता है, कोई मर जाता है या कोई जेल चला जाता है। कुछ समाचार रिपोर्टों में भी कहा गया है कि एक पुजारी को विधानसभा प्रवेश द्वार के पास अनुष्ठान करते हुए भी देखा गया था। तिथियों की तरह स्थान भी शुभ या अशुभ होते हैं। उत्तर प्रदेश के किसी भी मौजूदा मुख्यमंत्री को नोएडा का दौरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शहर की यात्रा का मतलब सत्ता खोना और फिर कभी पद नहीं संभालना है। मान्यताओं के मुताबिक अखिलेश यादव नोएडा से दूर रहे। वह मई 2013 में आयोजित एशियाई विकास बैंक शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए, जब उनकी उपस्थिति नोएडा में 6 लेन यमुना एक्सप्रेसवे तक पहुंच सहित 3300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को लॉन्च करने के लिए महत्वपूर्ण हो गई, तो उन्होंने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऐसा किया। यहां तक कि दादरी हत्याकांड के पीड़ित मोहम्मद अखलाक के परिवार वालों को भी अखिलेश यादव से मिलवाने के लिए लखनऊ ले जाया गया। उनसे पहले मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह भी नोएडा जाने से बचते रहे। ऐसा कहा जाता है कि नोएडा से जुड़ा अंधविश्वास पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह से शुरू हुआ, जिन्होंने जून 1988 में केंद्रीय नेतृत्व द्वारा पद छोड़ने के लिए कहा गया था। हालांकि बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती ने अपनी मुख्यमंत्री कार्यकाल 2017 से 2012 के दौरान अंधविश्वास को डटकर सामना किया और नोएडा में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया। जब 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा सत्ता हार गई, तो नोएडा का मामला फिर से खबरों में आ गया। एक और मुख्यमंत्री जिसने इस मिथक को चुनौती देने का साहस किया, वह थे आदित्यनाथ। उन्होंने दिसंबर 2017 में दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन का उद्घाटन करने के लिए नोएडा का दौरा किया, लेकिन सिर्फ 3 महीने बाद भाजपा महत्वपूर्ण गोरखपुर और फूलपुर चुनाव हार गई। भारतीय राजनेताओं का मानना है कि यदि पार्टी जीतती है तो इसका श्रेय नेता के करिश्मे को जाता है, लेकिन जब वह हारती है तो इसका श्रेय उसकी मूर्खता को जाता है। उत्तर प्रदेश के लिए जो नोएडा है, वही मध्य प्रदेश के लिए अशोक नगर और इछावर है। ऐसा माना जाता है कि एमपी के जो मुख्यमंत्री इन जगहों पर पैर रखते हैं, उन्हें सत्ता गंवानी पड़ती है, और इस मुद्दे पर बिहार भी कुछ बचा हुआ नहीं है। राज्य विधानसभा चुनाव के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तांत्रिक से मिलते दिख रहे थे। वहीं कोलकाता में खबरों के मुताबिक एक दैनिक अखबार में खबर छपी थी, जिसमें बताया गया था कि ज्योतिषी पिछले आम चुनाव से ठीक पहले ममता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे थे। कोलकाता में ज्योतिषियों का कहना है कि केंद्र में अस्थिर सरकार के लिए चुनाव के बाद दीदी को मोदी से हाथ मिलाना होगा। उन्होंने कहा, सितारों की स्थिति को देखते हुए यह एक अपरिहार्य निष्कर्षता। चीजों को ठीक से काम करने के लिए ज्योतिषी ने हवन और विशेष पूजा का भी आयोजन किया था। वाम मोर्चे के नेता शायद भारत में एकमात्र मुख्य धारा के राजनेता जो सितारों के नीचे शरण नहीं लेते हैं। हवन का संचालन करने वाले आश्वस्त विश्व मोहन पहाड़ी ने दावा किया, हमें विश्वास है कि ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी के साथ आ जाएंगे, क्योंकि आज की प्रार्थना के बाद उनके मतभेद जल्द ही दूर हो जाएंगे। चूंकि अगला चुनाव नजदीक था, भारत में फिर से सभी पार्टियों के नेताओं की भविष्यवाणियों, गणना और राशि चक्रों की सुनामी आने वाली है, जबकि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए और जनता के लिए माना जाता है। भारतीय राजनेताओं ने लोक शब्द को अंधविश्वास से बदल दिया है।